स्टिकल इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो फेडरल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट, उसका आप फिक्र ना करें। तो आप जो है, हम आपको एनकरेज करते हैं कि उसको वेस्ट ना करें, उसको फेंके ना, उसको एक्सपायर ना होने दें, उस जगहों पे आने दें जहां
वैक्सीन इज लाइक अ गोल्ड राइट नाउ,
इट्स जस्ट लाइक अ गोल्ड पेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी एग्जैक्टली, गोल्ड की तरह है, बिल्कुल हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि हम उनको मुल्क के जितने हिस्सों में ट्रांसफर करना है ट्रांसफर कर लेंगे।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जी
जी, अच्छा महेश भाई, हम ये पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा जो है, इसकी हम कॉन्स्टेंटली आपको बता रहे हैं खबर। आपको पता है कि अभी हमने मई 14th को भी बताया था, इन्होंने जो पूरा प्लान दिया था कि अगर 75% कनेडियंस को वन डोज मिल गई तो हम ये खोल देंगे, ये कर। आज उन्होंने फिर से कहा, उन्होंने कहा है कि हम जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया, उन्होंने कहा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये चीजें रिस्ट्रिक्शन जो है रिलैक्स हो जाएंगी बाय समर, जो है इस समर में, और आप यू वुड बी एबल टू डू फ्यूअर थिंग्स। यानी अब वो फ्यूअर थिंग्स वही हैं जो उन्होंने 14 मई को दी थी प्लान के मुताबिक, कि अगर वन डोज मिल जाएगी तो आप बाहर जा सकेंगे, टू डोजेस जो है वो आपको मतलब 75% लोगों को मिल जाएंगी, तो फिर जो है हम जो है आप इनडोर कर सकेंगे, कुछ सैलून खुल जाएंगे, कुछ आप जो है वो डाइनिंग कर सकेंगे चार लोगों के साथ बैठ के टेबल, तो मतलब इस तरह की चीजें जो। तो आज उन्होंने कहा है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका समर अच्छा हो सकता है।
तो शाजी जी भी खड़ी हुई है ऊपर प्ले बैक लेके, सामने सामने प्ले कार्ड लेके,
हाँ,
कि भाई आप पहले कुछ खोलो ना खोलो, सैलून खोल दो।
हाँ, मेरा तो दिल चाह रहा है उस बंदे का सिर तोड़ू जाके जिसने ये मशवरा गवर्नमेंट को दिया है कि भाई सैलून जो है वो इसेंशियल सर्विस नहीं है।
हाँ,
तो भाई तुमने तुम्हें किसने कहा है?
किसी आदमी ने कहा होगा जरूर।
हाँ मजद भाई, जो जो है ना ये औरतों के खिलाफ है। देखिए हम मर्दों के साथ हैं और वो हमारे खिलाफ हैं, ये दिस इज नॉट फेयर।
मैं आपके पीछे खड़ा हूँ।
आप मेरे पीछे खड़े, बस मुझे और कोई नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो बस ऐसे है। तो वो कह रहे हैं जी कि फिर आप हाउस होल्ड पार्टीज कुछ कर सकेंगे लिमिटेड कैपेसिटी में, इस तरह जैसे जैसे वो होता जाएगा। तो आज जरा बड़ी उम्मीद जागी है कि अच्छा फिर इसका मतलब है कुछ सही तरफ हम जो है डायरेक्शन में,
बट वी आर डूइंग वेरी फास्ट एनीवे। और
हाँ,
अब ये जो दूसरी मॉडर्ना की एंड फाइजर्स की आ जाएंगी नेक्स्ट वीक, वीक आफ्टर तक, तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks विल बी गेटिंग मिलियंस ऑफ दीज
डोजेस। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अल्बर्टा का कल हमने आपको बताया था, जो जेसन कैनी साहब आपके जो है उन्होंने 3 वो जो स्टेप प्लान बताया था, तो कि जी हम कैसे अल्बर्टा को खोलेंगे समर के लिए। तो आज बहुत सारे लोग जो है उनका क्रिटिसिज्म आ गया, वो कहते हैं हाँ जी हमको पता है वो जो अल्बर्टा स्टैम्पीड होता है ना, तो उसमें जरा वो थोड़ा क्रेज उसका या वाइब उसके लिए पैदा करने के लिए ये बातें की जा रही हैं कि 3 stage प्लान है और हम खोल देंगे। तो आज एक्सपर्ट्स जो है वहां पर उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये खोला और खास तौर पे उन पॉकेट्स के अंदर जिसमें के केसेस आए हैं, तो फिर बहुत तेजी से सर्ज चलेगा इसमें।
फिर जेसन कैनी ने कुछ कहा,
सके बिचारे
जॉन टोरी साहब और जेसन कैनी दोनों एक जैसे हैं, जामू खोला
सारे गर्दिश में हम अजय भाई। इनको किसी ज्योतिषी के पास बैठना चाहिए। वो नहीं था वो जो सलमान खान था, सलमान खान की फिल्में अच्छा नहीं कर रही थी ना, तो वो वहां पे वो गया, उसके एक ज्योतिषी है लड़की सुनीता, उसके पास गया। तो उसने, अब आप देखें हर फिल्म में उसने ना एक वो पेंडेंट सा पहना होता है, बीच उसके जो है ना वो लगा होता है, फिरोजा लगा होता है। तो वो कहते हैं जिस दिन से उसने वो ब्रेसलेट पहनना शुरू किया ना, उसके सितारे चमक रहे हैं अब, तो उसकी हर फिल्म जो है हिट होती है, 100 crore बनाती है।
तो मेरा ख्याल वो
वैसे कुछ ब्रेसलेट जो है ना वो जॉन टोरी और जेसन कैनी को भी चाहिए।
हालांकि जेसन कैनी की कल आपने काफी तारीफ की थी,
बड़ी,
बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने,
बड़ी अच्छी बातें की
है ना, मगर लीजिए जी अच्छी बातें उनको लोगों को पसंद नहीं आई,
डॉक्टरों को पसंद नहीं,
जेसन ने कहा है ना, तो ये इसका
सही नहीं है,
गलत नहीं है,
सही नहीं है। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा सारा समर जो है ये खराब करेगा।
अच्छा,
हाँ, तो ये इसकी मानने की बात नहीं है, क्योंकि ये पॉकेट्स कुछ ऐसी हैं जहां पे कि अभी तक बड़े सिटीज की तरह वैक्सीनेशंस नहीं हुई हैं, तो बड़ा खतरा है, तो ऐसे ना करें आप। अच्छा जनाब, आज आप देखें माजिद भाई, मैं कहती हूँ ये कौन सा मुल्क है यार, ये कौन सा, ये इसको कौन वैसे एडवांस, कनेडा को कौन एडवांस कंट्री वैसे कहता है माजिद भाई, उसका भी मैं सर तोड़ू।
क्या हुआ?
अच्छा जनाब, आप सोच सकते हैं कि आज एक रिपोर्ट आई है ऑन्टेरियो की, जो लॉन्ग टर्म केयर मैरी फुल्टन है, उन्होंने आज रिपोर्ट दी है। कैन यू इमेजिन इन अ कंट्री लाइक कनेडा, जो के कहता है कि जी हम बड़े एडवांस हैं, ओल्ड एज होम्स के अंदर एसी नहीं है माजिद भाई, एसी नहीं है। आपको पता है हमारे सर्वेंट क्वार्टरों में लगे हुए हैं एसी पाकिस्तान में,
मगर
व्हाट इज दिस?
मगर अगेन देखिए ना, एसी का मतलब सिर्फ एसी नहीं होता कि आपने एक $2000 का खरीदा वहां लगा दिया, अब अगर वो 500 यूनिट्स हैं और 500 यूनिट्स के जब एसी चलते हैं तो उसकी जो एनर्जी जाती है वहां पर उस पर उनका भी खर्चा आता है ना,
तो पहले तो लोगों से
ये जो है ये उन जगहों की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे डिटेल में जाएं आप तो उन जगहों की बात कर रहे हैं जो कि कम पैसों में लोगों को उन्होंने रखा हुआ है।
हाँ जी,
जो फाइव स्टार के जो ये होम्स हैं, फाइव स्टार होम्स, वो उसके अंदर जो आप
जबरदस्त फैसिलिटीज
हैं, पूरे इंडिविजुअल एसीज लगे।
हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि अब गवर्नमेंट ने आज बताया है कि 626 अब इस तरह के होम्स थे जहां पे के एसी नहीं था, तो अब वहां पे 100% हमने कहा है कि उन लॉन्ग टर्म केयर होम्स में आप एसी लगाएं, और वो लग गए हैं। और कुछ जहां पे जगहों पे हर कमरे में लगाना मुमकिन नहीं था, वहां हमने कहा है कि एटलीस्ट जो एक कॉमन एरिया है उसमें आप एसी लगाएं।
सही,
तो आज उन्होंने ये इस चीज की जो है वो सारी डिटेल्स दी हैं, और उसने कहा है कि ये हमने जो था ये कहा था कि ये
मोस्टली गवर्नमेंट रन जो
गवर्नमेंट रन जी सब्सिडाइज्ड
है ना,
हाँ, 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 हाँ,
वो तो, उनमें क्योंकि पैसा कम है उनके
जी
पास,
पैसा कम है उनके पास, तो उन्होंने कहा जी कि हमने अब पहले उनके पास एसीज जो थे अवेलेबल नहीं थे, तो अब हमने उनको कहा है कि आप प्लीज जरूर जो है वो करें, तो उन्होंने लगाया। अच्छा जी, G7 के जो कंट्रीज हैं वो अब उनको खाली अब बेलारूस नजर आना लग गया है कि बेलारूस के अंदर बहुत ज्यादा जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं।
हाँ जी,
हाँ जी, तो G7 ने आज कहा है कि हम और ज्यादा जो है इनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। जो कुछ उन्होंने अपने जर्नलिस्ट के साथ किया है और डाइवर्ट किया है, वो जो था एयरलाइनर उसके की वजह से जो है उसने अटैक किया है बेलारूस ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, सिविल एविएशन के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए हम बेलारूस के ऊपर जो है और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, और हमारी कोई फ्लाइटें बेलारूस नहीं जाएंगी, और बेलारूस से कोई फ्लाइट हमारे मुल्क में नहीं आएगी। हमारी फ्लाइटों को हमने बोल दिया कि आपने डाइवर्ट करके जाना है बेलारूस की, आपने एयर स्पेस नहीं यूज करनी है। तो ये जनाब आज जो है
that's a pressure
जी हाँ, ये G7 ने जी आज कहा है, और उन्होंने कहा है कि उनकी भी कोई फ्लाइट किसी भी G7 कंट्री के ऊपर से नहीं गुजरेगी।
एंड बेलारूस आपको पता होना चाहिए कि इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री,
गरीब कंट्री है हमारे भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, आज
मतलब उसके पास रूस पीछे खड़ा है उसके।
हाँ मजद भाई, जैसे मेरे पीछे आप खड़े हैं।
हाँ
हाँ, हाँ
रूस पीछे
हाँ,
खड़ा है उसके।
रूस तो हर गलत पीछे रूस खड़ा है ना, सीरिया के पीछे भी रूस ही खड़ा हुआ है।
रूस खड़ा हुआ है,
रूस खड़ा हुआ है। हाँ
देख लो जी।
हाँ, वो कह रहे हैं हम इनको रूस करेंगे। हाँ, देखो सही सारों को। अच्छा जी, आज जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो हेड हैं मिशेल बैशले, उन्होंने आज एक स्पेशल एड्रेस किया, और उन्होंने आज कहा है कि मुझे लगता है कि इसराइल ने जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर हमले किए हैं ये वॉर क्राइम्स के अंदर आ सकते हैं। इन्होंने झूठ बोला है, वो खासतौर पर वो जो बिल्डिंग जिसके के अंदर इन्होंने कहा कि हमास के मिलिट्री जो था वो हेडक्वार्टर था, और वो जो था उसमें कोई, मुझे जो खबर मिली है उसमें कोई मिलिट्री जो थे उसके ऑपरेशंस नहीं थे, और अगर मुझे और खबरें आईं कि ये सिविलियंस इसमें रह रहे थे और सिविलियंस के ऊपर इन्होंने अटैक किया और औरतों और बच्चों को मारा है, तो फिर इसको ट्राई किया जाना चाहिए फॉर वॉर क्राइम्स। तो अब देखेंगे क्या होगा, लेकिन अब इसराइल के पीछे कौन खड़ा है?
कुछ
अंकल सैम खड़े हैं उनके पीछे, और वो बहुत ही करीब खड़े हैं, वो आपकी तरह दूर नहीं खड़े माजिद भाई, तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल इनका ये बयान आज बड़ा सख्त आया, तो ये जो है वर्ल्ड लेवल पे इसको जो है काफी यूज देखा जा रहा है। अच्छा जी, आयरिश पार्लियामेंट जो है माजिद भाई, ये जो है दिस हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन पार्लियामेंट, जो है इनकी जो अपोजिशन पार्टी है शिन फेन जो है, उन्होंने आज कहा है कि इसराइल ने पैलेस्टाइन पे जुल्म किए हैं। ये पहली यूरोपियन पार्लियामेंट है जिसके अंदर ये कहा गया। इनकी जो लीडर है पार्टी की मैरी लू मैकडोनल्ड, उन्होंने ये कहा है अपने ट्विटर के ऊपर कि जो कुछ भी इसराइल ने किया है ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जो उन्होंने पैलेस्टाइन के साथ किया है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मर्द नहीं थे, उसमें औरतें भी थीं और उसमें बच्चे भी थे। तो ये जो है ये किया, तो आज इसके ऊपर भी जो है दुनिया में काफी शोर मचा हुआ है, क्योंकि यूरोप ने तो ऐसी कभी आज तक बात की नहीं है। वो तो कहते हैं कि शैतान तो पैलेस्टीनियंस है, इसराइल तो कभी कुछ करता ही नहीं है। तो ये जो छेड़ते ये उसको है, फिर वो अपने आप को दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, राइट? तो वो हमेशा कहते हैं। तो वहां पे वो जो उनके एम्बेसडर हैं आयरलैंड के अंदर जूलियन वाहबा, उन्होंने आज बड़ा उनका जी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि वी रियली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो वही मैं अपना हेड स्क्रैच कर रही थी कि पाकिस्तान तो आपके लिए लड़ता मरता यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया, कोई महमूद अब्बास की तरफ से कोई शुक्रिया का कोई पैगाम आया इमरान खान साहब को?
नहीं वो शुक्रिया नहीं करते, वो
शुक्रिया नहीं करते?
आपस में यार दोस्तों में शुक्रिया नहीं होता।
ओ अच्छा अच्छा, प्यार ही ऐसे है,
प्यार ही ऐसा है जी। हाँ, हाँ, वो तो हमारा फर्ज है ना।
हाँ, वो हमारा फर्ज है, पाकिस्तान का फर्ज है उनका, उनके पीछे खड़े रहना,
उनके पीछे खड़े रहना ठीक
है। अच्छा, आज हमारी जो खबरों की हेडलाइन है ना, पीछे खड़े रहना,
पीछे खड़े
रहना, पीछे खड़े, हर किसी के पीछे खड़े,
सबको एक दूसरे के पीछे खड़े।
तो बस मजे भाई, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के पीछे खड़ा है।
हाँ जी,
लेकिन उन्होंने शुक्रिया नहीं अदा करना है। अच्छा,
हम पीछे खड़े ना, पलट के मत देखना।
ठीक है मजे, ठीक है। अच्छा जनाब, आज जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन साहब जो हैं वो आज रुवांडा के दौरे के ऊपर थे, और जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा है कि ये जो 800,000 जो रुवांडन्स का जो हुआ था मैसेकर और जीनोसाइड हुआ था, उसको रोका जा सकता था इन 1994 अगर फ्रांस थोड़ा सा हिल जाता। लेकिन फ्रांस तो आपको पता है ना, मुल्क इतना बड़ा, हिलना कितना मुश्किल है उसके लिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया पे डाल दी। कहते जी इंटरनेशनल कम्युनिटी 3 महीने तक गौर से देखती रही, पता नहीं क्या गौर से देख रहे थे कि लोग कैसे मर रहे हैं, देखती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई उसके ऊपर नहीं किया। तो फ्रांस इसमें लीड ले सकता था। तो वहां पे मीडिया ने पूछा तो इसका क्या मतलब है, आप सॉरी बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मैं सॉरी तो मतलब ऐसा अपोलॉजी कोई नहीं है ये, लेकिन हम समझते हैं कि फ्रांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बस सॉरी शरी नहीं मैंने करना,
सॉरी करेंगे कॉम्पनसेशन मांगेंगे फिर।
हाँ बिल्कुल, वो तो हमें देनी नहीं है। ठीक है जी, तो उन्होंने बस जी सॉरी नहीं किया, मगर उन्होंने कहा हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो फिर भाई साहब फिर मतलब है तुसी गए क्यों, दौरे होते हैं, अभी फिरन गए हो तुसी। हाँ जी, अच्छा जनाब, आज आर्मेनियन मिलिट्री ने कहा है कि अजरबैजान ने हमारे 6 ट्रूप्स जो है उनको पकड़ लिया है, और वही जो इलाका है जो मजद भाई जिसके कि हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, नगोर्नो कराबाख का जो एरिया है, उसी के ऊपर वो जो झड़पें सी छोटी छोटी चलती रहती हैं। तो उसमें जो है आर्मेनिया, वो कहता है कि जी आपने हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी उससे हमारे सोल्जर्स उठा लिए हैं, जबकि आजरबाइजान कहता है कि नहीं, ये उस इलाके में घुस के कोई शैतानी करना चाहते थे, कोई बॉम्ब फोड़ना चाहते थे और कोई माइंस लगाना चाहते थे, तो इसलिए हमने इनको पकड़ा है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे फौजियों को वापस करो, तो वो कह रहे हैं जी नहीं मैं ना मानूं, मैं ना दूंगा, क्योंकि इनके पीछे भी जो है कोई खड़ा हुआ ना मजिद भाई।
हाँ जी,
तो वो डरते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं देने तुम्हारे फौजी जो है, जाओ जो करना है कर लो। अच्छा मजिद भाई, इसको कहते हैं कैरेक्टर।
अच्छा
हाँ,
किसको?
हाँ है जी, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। हाँ जी, नहीं इसको कहते हैं कैरेक्टर ठीक है।
अच्छा अच्छा
अच्छा जी, जो आज का बयान आया है हमास के जो हेड हैं याहिया शिनवार, फिर मैं कुछ कहूंगी मत भाई, आप फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे, शाजिया जी आप मरवाएंगी क्या करती हैं ये वो, अपनी बातें शुरू कर देनी है, ये हमारे मौलवियों को इससे सीखने की जरूरत है माजिद भाई।
अच्छा,
हेड ऑफ हमास जो है याहिया शिनवार, उन्होंने आज कहा है जी, क्योंकि आपको पता ना यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने थोड़े दिन पहले कहा था एंथनी ब्लिंकन साहब ने, हम गाजा को हेल्प देंगे लेकिन वो हेल्प हमास को नहीं देंगे।
हाँ,
ये कहा था ना उन्होंने। तो आज याहिया शिनवार ने कहा जी कि मैं जरा क्लियर कर दूं यूएसए को कि यहां पे वैसे तो हम वेलकम करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड्स, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो अरब कंट्री से, क्योंकि कल हमने बताया था ना कतर भेज रहा है 500 मिलियन उनको, तो वो कह रहे हैं जी चाहे अरब वर्ल्ड से आ रही है चाहे इंटरनेशनल वर्ल्ड से आ रही है, हमको 1 रुपया उसमें नहीं चाहिए है, हम यही चाहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, ये जो आपने लोगों के घर और उनके फार्म्स बर्बाद कर दिए हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर आप यूज करें। और उन्होंने कहा जी हमास की हिस्ट्री है कि आज तक जब भी कभी इंटरनेशनल एड आई है हमास ने उसमें से 1 सेंट भी नहीं लिया है। 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, 1 सेंट नहीं कभी हमास ने लिया इंटरनेशनल एड का। तो ये बातें जो है ना कि हम हमास को नहीं देंगे, ना दे हमने कभी लिया भी नहीं है।
सही।
हाँ, क्योंकि अमेरिका ने कहा जी हम जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देंगे, जो कि द पार्टी दैट इज अलाइंड विद, आपको पता ही है ना महमूद अब्बास जो है उनके साथ, उन्होंने कहा जी हम लेते भी नहीं है और आप हमें दें भी ना, हमें चाहिए भी नहीं है। अच्छा, यूएसए के अंदर जी एक फार्मेसी चेन है सीवीएस, उन्होंने आज बड़ा जबरदस्त माजिद भाई वो किया है, इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बाइडन साहब जो है कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं ना कि अमेरिकन जो है एटलीस्ट 70% अमेरिकन को इंडिपेंडेंस डे तक जो है वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। लोग वहां पर ढीले पड़ गए हैं, लोग वहां पर मान नहीं रहे हैं, इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया है लोगों को। इनकी जो है पूरे अमेरिका में माजिद भाई 9,600 फार्मेसीज हैं। इन्होंने कहा है कि जो जो आके टीका लगवाएगा हमारी फार्मेसी के ऊपर, जो वैक्सीन लगवाएगा, हम उसको सुपर बॉल के जो हैं और क्रूजेस के टिकट्स देंगे हम उसको।
वाओ,
यस, अमेरिका चले मजद भाई,
ये
टीका लगवाने हैं,
दिल भी
आप सुपर बॉल पे जाना, मैं क्रूज पे
लाइन आप मतलब दे देंगे या उसके
देंगे देंगे जो टीका नहीं जो हाँ ड्रॉ करेंगे, जाहिर है ड्रॉ उधर होल्ड करेंगे, हाँ हाँ ड्रॉ उधर करेंगे, तो जो जो आएगा तो उनको ये
नाम ड्रॉ में चला जाएगा,
हाँ फिर वो ड्रॉ में निकलेंगे लेकर, क्योंकि मजद भाई देखे ना 9600 है इनके जो है वो, तो वो कह रहे हैं जी कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये दे सकते हैं। इससे पहले भी जो ओहायो के गवर्नर थे माइक डुबेन, उन्होंने भी जो थी बियर की एक एक बोतल दी थी और इसी तरह ड्रॉ में उनके नाम डाले थे और कहा था शायद आपका एक मिलियन आपका निकल सकता है, $1 million
माजा जी। अच्छा अच्छा,
हाँ जी हाँ जी, अब देखें ना जिसका $1 million
एक एक बोतल दी जा ड्रंक हो जा,
हाँ ड्रंक भी हो तो नाले तुम्हारा शायद निकला $1 million, ऐसे भी है माजा भाई। अच्छा जनाब, आज जो सेनेट के रिपब्लिकन्स हैं वो अब फिलीबस्टर कर रहे हैं टू ब्लॉक कमीशन ऑन January 6 जो हुआ था कि कैपिटल उसके ऊपर। अच्छा जी, अब फिलीबस्टर का क्या मतलब है? फिलीबस्टर का मतलब होता है लॉन्ग
डिबेट्स,
हाँ
खड़े
लड़ते रहो
दिन हो जाए रात हो जाए सुबह हो जाए, फिर मतलब
आपने डिबेट जारी रखनी है,
हिलना नहीं है
चाहे आपने बाथरूम आपको कितना जोर से जाना हो, नहीं आप बैठे रहे बस हिलना नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए हमारा मशवरा पानी ना पिए भाई आप ज्यादा,
नहीं बाथरूम के लिए जा सकते हैं।
अच्छा जा सकते हैं, ओके ओके चलो, अच्छा हुआ भाई आपने जो है क्लैरिफाई कर दिया, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है,
मुश्किल हो जाती
है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी कि हम ये करेंगे। अच्छा अब ये कहते हैं जी कि ये कितनी अजीब बात है कि हम ये सारा प्रोब लाना चाहते हैं सामने, हम देखना चाहते हैं, तो जो है ये हमारे साथ जो है साथ नहीं हमारा दे रहे हैं। अच्छा होता क्या है, क्योंकि अब जो सेनेट है ना मजद भाई वो बहुत इवनली अब वो है 50% डेमोक्रेट्स हैं 50% रिपब्लिकन्स हैं, तो अब इसमें वो कहते हैं जी कि होना चाहिए जीतने के लिए ना आपको जो है तकरीबन आपको 60 वोट्स चाहिए हैं, तो यानी वो कहते हैं हम ये लॉ भी चेंज करना चाहते हैं, 60 क्यों चाहिए 51 क्यों नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं जी हम एक तो ये लॉ भी चेंज करना चाहते हैं और ये भी, तो अब ये देखने में आएगा कि अब क्या होएगा इस पे,
क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट उनकी अपनी है ना,
हाँ, हाँ,
तो इसलिए जो है वो
वीटो है उसके पास,
वीटो है उसके,
यस दैट इज द थिंग, यस यू आर वेरी स्मार्ट मजद, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक रिपोर्ट है और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिसको आज बहुत ज्यादा हाईलाइट दुनिया में किया जा रहा है, बाइडन साहब कह रहे हैं कि ब्रीचिंग 2022 मैं $6 trillion का जो है मैं फेडरल स्पेंडिंग करना चाहता हूं।
अच्छा
हाँ, अच्छा वो कहते हैं जी कि इसको हमको अब लोग उनको क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने ऐसा किया तो नेक्स्ट डेकेड में जाते जाते आपका डेफिसिट 1.3 ट्रिलियन को टच करेगा, तो आप जरा थोड़ा सावधानी से चलें, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक हमने लोगों को इंसेंटिव्स ना दिए, जब तक हमने इकोनॉमी में पैसा ना डाला, पेंडेमिक से जो बहुत सारे जो हैं वो खराब हो गए हैं जो बिजनेसेस हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल, तो हमारे लिए इकोनॉमिक जो है वो करना रन करना मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं जी कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब है आप बाय 2031 अमरीका जो है यानी कि अमरीका जो है बाय 2031 का जो उसका GDP है उसको आप 117% तक राइज करेंगे और जैसे जैसे वो जाएगा वैसे वैसे आपके डेट्स बढ़ेंगे, तो उन डेट्स को लाने का प्लान क्या? अब बाइडन साहब के पास वो प्लान तो है नहीं, उनके पास तो खाली स्पेंडिंग का प्लान है, तो अब ये तो
छोटी मोटी स्पेंडिंग भी नहीं है, $6 trillion इज अ लॉट ऑफ मनी।
$6 trillion में मजद भाई 8 मुल्क चलते हैं दुनिया के,
8
10 चलते होंगे,
ज्यादा चलते हैं,
हाँ मजद
वी टॉक अबाउट 6, दिस इज नॉट बिलियन
ट्रिलियन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंडिया कब से कोशिश कर रहा है अपने आप को $2 trillion इकोनॉमी बनाने के लिए,
दिस इज नॉट मिलियन दिस इज नॉट बिलियन दिस इज ट्रिलियन,
जी 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 जी, तो ये जनाब आप कैसे नहीं, हम बड़े मुल्कों की बात कर रहे हैं ना मजद भाई, तो हम कह रहे हैं ना इंडिया टाइप के मुल्कों की, तो आप किस तरह के 6-7 बड़े जो मुल्क हैं, ये तो भाई उनके खर्चे हैं ऐसे 10 मुल्कों के हैं जी,
रहने दो
तुसी, ये ना करो बाइडन साहब एक ही कर रहे हो मुल्क का बेड़ा गर्क करना तुसी लाया है, चैन करो उनको है, दुनिया में लड़ाइयां तुसी शुरू कर देती हैं जी, ये ना करो, अच्छा हुण ये ना करो, अच्छा जनाब, तो ये आज जनाब वहां पे बड़ी डिस्कशन चल रही है, वो कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक प्लान जो है ये ठीक नहीं है, लेकिन बाइडन साहब कहते हैं कि हम जो मेरा जो प्लान है जो बिगर जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको हमने टैक्स करना है, तो जब हम टैक्स करेंगे तो पैसे वापस आ जाएंगे, उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं आएगी वापस, चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस को आप टैक्स करें, तो ये डिजास्ट्रस प्लान है, जैसे कि इंडिया में आया था ना एक दफा डीमोनेटाइजेशन का, बहुत इकोनॉमिस्टों ने मना किया था ना करें
किया था उन्होंने,
मगर उन्होंने किया था,
मोदी साहब ने किया था,
तो इकोनॉमी ऐसे एकदम से नोज डाइव कर गई, राइट, तो इसलिए। अच्छा जी, अल जजीरा की आज ये खबर है और ये बहुत ही चौंका देने वाली है और मुझे समझ नहीं आई कि ये इतनी बड़ी खबर है एटलीस्ट फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, ये क्यों मुस्लिम वर्ल्ड के अखबारों के अंदर जो है ये इसको नहीं किया गया। आपको पता है बांग्लादेश भी जो था वो आज तक इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता था और उसका जो पुराना पासपोर्ट था ना उस पर लिखा होता था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द अदर कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इसराइल।
वही जो पाकिस्तान का था ना,
पाकिस्तान का,
पाकिस्तान
था।
का हाँ। जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था तो उस वक्त एक
हाँ,
ही पासपोर्ट
हाँ,
था
हाँ, जी,
तो
जी,
उस वक्त यही उसी चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया,
उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। अभी जनाब जो उनके ई पासपोर्ट्स आए हैं नए वाले जिनके अंदर वो चिप्स नहीं लगी होती
हाँ,
हैं वो वाले, उसके अंदर से ये क्लॉज निकाल दी गई है, यानी कि दिस पासपोर्ट नाउ इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज, ऑल द कंट्रीज। तो वहां पे जो लोग हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग अभी तो थोड़े कंजर्वेटिव ही हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि इसके क्या मतलब हैं, कि क्या हम जो है इसराइल को एक्सेप्ट हम करना चाहते हैं और हम उसके साथ अब बिजनेस करना चाहते हैं, या कि ये कोई गलती है और ओमिशन है ये। लेकिन इतनी बड़ी तो ओमिशन नहीं आप कर सकते हैं।
सही।
तो ये गवर्नमेंट का माइंड सेट अब शो कर रही है कि इसका मतलब है कि शायद अब बांग्लादेश भी बाकी अरब कंट्रीज की तरह अपने टाइज शायद नॉर्मलाइज कर ले इसराइल के साथ। तो ये तो बड़ी बड़ी खबर है मुझे।
हाँ जी
हाँ जी। तो इसलिए जो है ये दान। अच्छा जनाब, अल जजीरा की दूसरी खबर है और ये लिखी है, दिस स्टोरी इज रिटन बाय वाले सिंह, और वाले सिंह की जो हेडलाइन है इस स्टोरी की वो है बीजेपी सपोर्टर्स से वोंट फॉरगिव मोदी फॉर कोविड इनडिफरेंस। अच्छा जी, वाले सिंह ने अल जजीरा की स्टोरी में लिखा है कि पेंडेमिक में 3 लाख के करीब लोग मर गए हैं, जो कि मानती नहीं है न्यूयॉर्क टाइम्स। वो कहती है कि ये 70 लाख के करीब जो है वो केसेस हैं और इसी तरह जो है पता नहीं कितने 30 लाख बंदा मर गया है, वो ये कहते हैं। बहरहाल जी, इनकी जो रिपोर्ट है वो उन्होंने तो ऑफिशियल फिगर ही लिया है अल जजीरा ने। उन्होंने कहा जी, वाले सिंह साहब कहते हैं कि 3 लाख बंदा मर गया है, केसेस ऊपर के ऊपर जाते जा रहे हैं, तो इंडिया के अंदर अब एक चेंज आना शुरू हो गई है, जो मोस्ट मोदी जी के डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो भी अब मोदी जी से पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इनकी पॉलिटिक्स रिलीजन, कास्ट और क्रीड के ऊपर अब हो गई है, इनको लोगों का कुछ ख्याल नहीं है, और ये जो हैं इन्होंने जो कुछ भी जो बातें कही हैं, जो प्रोमिसेस किए थे कि सब चंगा सी और ये इतनी मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, वो सब जो है इट्स सच अ शैम, और उसमें कुछ सही। तो वो कहते हैं ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो कुछ पिछले दिनों के अंदर जो ट्रेंड्स देखे गए हैं उसमें है रिजाइन मोदी हैशटैग के साथ, हैशटैग रिजाइन मोदी, हैशटैग मोदी फेल्ड इंडिया, हैशटैग मोदी अगेंस्ट नेशन, ये इस तरह के जो हैं हैशटैग्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पॉलिटिशियंस पीपल लाइक सुधांशु मिट्टल जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट जो है वो जो भी कर सकती थी पेंडेमिक में उसने किया है, तो ये लोगों की बड़ी ज्यादती है अगर वो हम पे एतराज कर रहे हैं ऐसे। अच्छा जनाब, दिल्ली के जो हाई कोर्ट है उसने आज उनकी जो जस्टिस थी मुक्ता गुप्ता जो हैं उनके पास एक शिकायत आई थी, एक प्ली आई थी उनके पास, और कहा गया था कि जनवरी 29 को जो लोग बेचारे गरीब फार्मर्स जो बैठे हुए थे दिल्ली के उधर बॉर्डर्स के ऊपर, उनके साथ बड़ा जुल्म ये हुआ था कि कुछ मिसक्रिएंट्स को उनके बीच में डाल दिया गया था और उन्होंने इनको जो है इनको मारा पीटा और इनके ऊपर अटैक्स किए थे, और उसमें कुछ गवर्नमेंट के लोग शामिल थे जिन्होंने उनको असिस्ट किया था। मुक्ता गुप्ता जी जो हैं वो कहती हैं कि इसके ऊपर मुझे एक आई है, प्ली आई है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब बिठाई जाए और ये जो है सारा मसला जो है SIT को दिया जाए। तो वो कहती हैं कि मैं इसकी इजाजत देती हूं, ये एक SIT जो है इसको ये काम दिया जाए और फाइंड आउट किया जाए कि फार्मर्स के जो कैंप्स थे उनके ऊपर किसने हमला किया और किसने उनको नुकसान पहुंचाया। तो जनाब ये एक और मोर्चा खुल गया वहां पे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमने आपको कल बताया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वॉल्कन बॉस्किर वो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस खबर को आज हर बंदे ने अपने तरीके से सुनाया है, ठीक है जी। अच्छा जी, असल में उन्होंने क्या कहा है माजद भाई, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं इट इज पाकिस्तान्स ड्यूटी टू ब्रिंग जम्मू एंड कश्मीर इशू टू यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म विद मोर विगर। मगर उनका ये सेंटेंस बिल्कुल हटा के जो आज हमारे जो कुछ बड़े डाई हार्ट जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इन्होंने तो जी बस इतनी बात की है कि जो शिमला जो है वो रेजोल्यूशन उसके मुताबिक जो है ये कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। उनकी जो आज स्पीच थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में, उस स्पीच का सबसे बड़ा जुमला ये था, ये सेंटेंस था It's Pakistan's duty to bring Jammu and Kashmir dispute to UN platform with more vigor. तो उन्होंने कहा कि ये जो है आपको, लेकिन जाहिर है उन्होंने ये कहा कि पीसफुल मीन से आपको इस मसले का हल जो है वो ढूंढने की जरूरत है. तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि ठीक है सिमला एग्रीमेंट एंड यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल दैट, लेकिन क्या आप ये बात रियलाइज करते हैं कि पैलेस्टाइन एंड कश्मीर आपके ही प्लेटफॉर्म्स के, यूएनजी के डेकेड्स ओल्ड मसले हैं जो कि आपने अभी तक हल नहीं किए हैं.
सो मैंने इसको करारदादें कहते हैं,
करारदादें.
हाँ जी, करारदाद पास हो गई,
पास हो गई है.
हाउ मेनी करारदाद कौमी असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली में, ये
एंड हाउ मेनी डेथ्स
स्टैक्स एंड स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ
एग्जैक्टली.
तो पहले जो करारदादें पास हुई हैं उनका तो कुछ करो, पहले
करो तो वही
दोबारा, फिर आप दोबारा हाँ जी लेके आओ जी, हम सुनेंगे. सुनने से वक्त चला गया.
वही उन्होंने कहा, उन्होंने यही कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि ये तो तुम्हारे डेकेड्स ओल्ड जो है डिस्प्यूट्स पड़े हुए हैं तुम्हारे पास ये, और इन दोनों के मसलों को तुमने हल नहीं किया है. तो इनको हल करने की जरूरत है ना. अब कैसे हल करेंगे,
अब सुनने की और फिर करारदाद लेने की,
डजंट मेक एनी सेंस. तो वो यही है जी, बस उन्होंने ये आज कहा है जी कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड सिमला अग्रीमेंट आप इन चीजों को जी सॉल्व करें. अच्छा जी, ये दैट वाज इट. अच्छा जनाब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज जो है एक पिटीशन लाई गई थी कि जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे रोक दिया जाए बैरिस्टर अली जफर को. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने आज इस चीज का बड़ा बुरा मनाया. उन्होंने कहा कि ये यूजलेस लोगों के, जो आम लोगों का जिसका के कोई ताल्लुक ही नहीं है इन केसेस के साथ, क्योंकि ये केस जो था ये फाइल की है, ये प्ली फाइल की है, एक फहद शाहिद है कोई साहब उन्होंने. तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप भाई क्यों कोर्ट का जो है कीमती टाइम जो है वो जाया कर रहे हैं, और ये अननोन लोग जिनका ताल्लुक नहीं है केस के साथ उनके केसेस आप ले आते हैं और अदालत का टाइम खराब करते हैं. तो उन्होंने कहा निकालें इसको, खारिज करें, और ये इररेलीवेंट लोग जो है इनको बोलें कि ये क्रिमिनल मैटर्स में कोई जरूरत नहीं है इनको जो है इस तरह के केसेस फाइल करने की. तो आज उन्होंने बड़ा बुरा मनाया और डांट दिया है वहां पे. अच्छा जी, वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज. सलमान खान जो हैं उनके आज लॉयर्स जो हैं वो जरा थोड़े से आज जरा एग्रेसिव मूड में थे, क्योंकि एक और खफा थे आज, क्योंकि एक वो इनके एक्टर हैं ये कमाल आर खान जो हैं, ये अक्सर जो हैं फिल्म स्टार्स जो हैं वहां पे बॉलीवुड के, उनके बारे में बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और सल्लू भाई के साथ उनका स्पेशल प्यार भी है वैसे. तो उन्होंने सलमान खान की जो फिल्म आई थी राधे द मोस्ट वांटेड भाई, उसको बहुत ज्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या बकवास फिल्म है, और ये अब मतलब इसको तो अब एक्टिंग नहीं आती है, और बस ये ऐसे ही इसको जो है वो बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है और फलां और डींग. उसके साथ ही क्या हुआ कि ये जो कमाल आर खान साहब हैं इनके ऊपर जो है उन्होंने लॉयर्स ने केस कर दिया. इसने सोशल मीडिया में जाके नंबर ऑफ ट्वीट्स की कि क्योंकि मैंने नेगेटिव रिव्यू राधे के लिए दिया था तो इसलिए ये रिवेंज में मेरे ऊपर इन्होंने केस किया है. तो सलमान खान के जो लॉयर्स हैं उन्होंने आज एक्सप्लेन किया है. लॉयर्स ऑफ सलमान खान वेंचर्स डीएसके लीगल जो हैं उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने जो फिल्म के ऊपर एतराज किया है उसके ऊपर हमने इन पे केस नहीं किया कमाल खान साहब के पास. इन्होंने बहुत ही गंदी बातें की हैं सलमान खान के बारे में कि ये जो इसकी बीइंग ह्यूमन जो वो जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और जो सलमान खान है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं. तो ये हमारे क्लाइंट के ऊपर जो है और मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग उसके लिए हमने इनके ऊपर केस फाइल किया, राधे के नेगेटिव उसके लिए नहीं हमने किया, क्योंकि ये तो हमेशा ही सलमान खान के खिलाफ बोलते हैं. तो आज तक कितने केसेस किए हैं हमने इनके ऊपर, हमने कभी नहीं किए. और उन्होंने पूरे आज नंबर ऑफ ट्वीट्स जो हैं वो वहां पे दिखाए हैं. उन्होंने कहा ये देखें इस मौके पर उन्होंने ये बातें सलमान खान के खिलाफ की हुई हैं. तो कब कितने केसेस किए इनके ऊपर, लेकिन ये जो एलिगेशन हैं दीज आर सीरियस, तो उसके ऊपर इनके ऊपर केस चलाना पड़ेगा. अच्छा जनाब, ये जो 2021 का जो हमारा पीएसएल है जो अबू धाबी में होना है, ये जरा थोड़ा हम सा कुछ ऐसे डोल ड्रम्स में पड़ता हुआ नजर आ रहा है. हाँ, उसकी वजह ये है कि वैसे तो 145 ऑफिशियल्स फ्रॉम लाहौर एंड प्लेयर्स फ्रॉम लाहौर एंड 57 फ्रॉम कराची अबू धाबी पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी 25 प्लेयर्स अभी तक अबू धाबी नहीं पहुंच सके. और वही जो हमने कल स्टोरी सुनाई थी कि जी वीजे के वो प्रॉब्लम्स हैं, तो पीसीबी अब कह रहा है कि हो सकता है अबू धाबी में हम ना करें, हम वेन्यू चेंज कर लें, हम शारजा में कर लेंगे, तो शारजा से हमें आसानी से वीजे मिल जाएंगे. तो हमको जरूरी नहीं है कि हम फिर ये उसी में करें. और कुछ जो है वो फ्लाइट्स कुछ प्लेयर्स जो हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम्स वो करें, तो उन्होंने कहा कि फिर हम अब हम देखेंगे कि हमको हाउ डू वी हैव टू यू नो मूव अहेड, कराना तो हमको है ही है इसको। तो क्योंकि ये सारे प्लेयर्स जो हैं पहुंच गए ना, 250 बंदा उधर पहुंच गया ऑलरेडी,
तो उसके साथ साथ ये तो सिर्फ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स के
ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ है, बहुत कुछ होता है ना,
मीडिया है वहां पर, दुनिया भर
में मीडिया पहुंचा हुआ है। दैट्स राइट, हां जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जी, एक्लेम जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं पैट कमिंग्स, जो काफी पाकिस्तान में आते हैं और ये हमारे पीएसएल में भी नजर आते हैं, वो जो हैं उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो टीम कैप्टन हैं बाबर आजम, वो टफेस्ट बैट्समैन है जो मैं समझता हूं, जिसको बॉलिंग कराना बहुत टफ है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है, वो बॉल को देख के उस तरह की वो शॉट खेल लेता है, तो इसलिए उसको बॉलिंग बड़े वो सोच समझ के करानी पड़ती है।
दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
हाँ, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो वो कहते हैं जी के, और अभी जो है, और ये वो बॉलर है मजिद भाई जिसको अभी आईसीसी ने नंबर वन टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड का अभी इसको जो है वो टाइटल अभी मिला है। तो ये नंबर वन टेस्ट बॉलर जो है इसने आज जो है ये कहा है जी बाबर आजम के बारे में। एंड जनाब अवर लास्ट न्यूज एब्सोल्युटली इज अबाउट जिनदीन जिदान मजिद भाई। तो वो अब जो है उन्होंने जो है रियल मैड्रिड के मैनेजर थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं छोड़ रहा हूं रियल मैड्रिड, इसलिए कि जो लालीगा में जो ये थी दूसरी एल्टी को मैड्रिड, उससे हम जो है हार गए हैं। वो कहते हैं जी कि जो क्लब है जो है उसने तो कहा है इनको कि हम हमेशा इनको याद रखेंगे, इनके प्रोफेशनलिज्म को, डेडिकेशन को, वी रियली लव हिम, रियल मैड्रिड जो है वो इनके साथ बड़ा प्यार करता है और इनकी लेगेसी को हमेशा याद रखेगा और हमारे दिलों में बसते हैं जिडान, और हमारे जो फैंस हैं रियल मैड्रिड के उनके दिलों में बसते हैं। लेकिन जिडान ने इसलिए छोड़ा है, वो कहता जी मैं बहुत ज्यादा जो है वो हार्ट ब्रोकन हूं, हालांकि इसके टाइम में 13 टाइम्स जो है यूरोपियन चैंपियन रह चुका है और दो दफा जो है रियल मैड्रिड के को जो है ये इन्होंने चैंपियनशिप लीग भी जीती है और तीन दफा जीती है इन्होंने, और लेकिन इन्होंने कहा कि जी इस सीजन में हम चूंकि कुछ नहीं कर सके हैं मेरा क्लब, तो इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं बहुत उदास हूं।
आप भी उदास हैं?
मैं भी उदास, मुझे बहुत पसंद है जिदान, मुझे आई रियली लव इट। इसकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है मजद भाई, इसकी स्टोरी कभी पढ़े ना आप, पैर में पहनने के लिए जूता नहीं था एंड सी वेयर ही रीच्ड, माय गॉड अमेजिंग।
जिसको अल्लाह दे उसको दे ले,
बस हमको भी कोई छुपड़ फोड़ के दे दे, हम इसी इंतजार में बैठे
हैं। मैं पीछे खड़ा हूँ।
हाँ बिल्कुल बस मजद भाई, मुझे हर रोज ये आपको याद कराने की जरूरत है, ठीक है? परवाह करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ,
मैं आपके पीछे खड़ा हूँ,
बस ठीक है भाई, थैंक यू भाई।
अभी ये उठ के जा रही है तो मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ,
और क्योंकि मेरे पीछे खड़ा होना है,
मैं इनके पीछे खड़ा होना है मुझे, तो मैं जब उठ के जाएंगी तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, ये भी जहां जाएंगी मैं पीछे पीछे होऊंगा इनके। तो कल हाँ कल तो जुमा है, कल हमारी आपकी मुलाकात होगी शादी जी से, एंड इसी वक्त तैयार रहिएगा ताज़ा तरीन खबरों की जानिब।
बहुत शुक्रिया
इंशाल्लाह। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक।
ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ।
कोविड-19 से हमने ये सीखा है कि एक छोटी सी चीज कितनी तेजी से फैल सकती है, एक उठती लहर की तरह। अगर हम में से ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा लें तो हम एक बड़ी लहर शुरू कर सकते हैं, कनाडा के लोगों की लहर, जो हमें अपने प्यारी जगहों और अपने प्यारों के पास लौटने में मदद करेगी। हम सब वैक्सीन लगवा कर मदद कर सकते हैं। canada.ca/covid-vaccine पर मजीद जानें। हुकूमत कनाडा की तरफ से एक पैगाम।
J&J Mortgages deals with mortgages for self-employed, financing for second mortgages, 100% financing on builder purchases, new immigrants and low rates. If you're looking for a career in mortgage industry, J&J Mortgages is hiring for new and experienced mortgage agents. For more information, call Jarmanjeet Singh or Gurpreet Obey at 416-898-3800-416-898-3800. Brokerage license number 13034.
आसान नहीं होता अपनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर छोड़ देना, लेकिन आपने किया, इसीलिए जब आप घर के बारे में सोचते हैं तो सांबा बैंक आपके बारे में, जैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक एक्सचेंज या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और हाँ, पैसे रखने या ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं। घर वालों के लिए गाड़ी लेनी हो या पैसे भिजवाने हो, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हर ट्रांजैक्शन मिनटों में। तो अपना सांबा बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाने के लिए अभी www.samba.com.pk पर विजिट करें और सिर्फ 10 मिनट में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें। सांबा बैंक पाकिस्तान, व्हेन यू थिंक ऑफ होम वी थिंक ऑफ यू। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
ओंटारियो का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है। जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहने, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, आपकी बारी जल्द आने वाली है। ontario.ca/covid-vaccine-plan पर मजीद जानें या 300 जबानों में मालूमात के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। अदायगी शुदा मनजानिब हुकूमत ओंटारियो।
सोडी फर्नीचर वालों अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स वास्ते एक खास सूचना। लॉकडाउन दे मौजूदा सिचुएशन नु देखते हुए अपने कस्टमर्स दी सेफ्टी ले सोडी फर्नीचर ने कर्ब साइड पिकअप अते डोर डिलीवरी दी सर्विस शुरू कर दिती है। तुसी एना दी वेबसाइट ते जाके अपना फर्नीचर पसंद करो ते अपना फोन नंबर एना नु ईमेल करो central@sodifurniture.com ते। सोडी फर्नीचर दी सेल्स टीम वर्चुअल टूर्स अते बेस्ट डील्स ले तुहानू आप फोन करेगी। खूबसूरत फर्नीचर बेस्ट प्राइसेस ते मिलेगा सोडी फर्नीचर तो।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
बैंक अल्फला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहे पैसे डालें और जब चाहे पैसे वापस ले जाएं और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अल्फला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
पिंड दा मजा हुन कैनेडा विच वी। कैलेडन सब्जी फार्म तो ताजा हरियां ऑर्गेनिक सब्जियां दे नाल हरी मिर्च, लौकी, करेले, बैंगन, मूली, मेथी, धनिया, साग, मटर, गाजरां, खीरे ते शलजम ते होर भी बहुत सारी सब्जियां खुद अपने हत्था नाल उगा के बेचते हैं ताडे ले। अपना फार्म ते अपनी ही दुकान अज ही पहुंचो। कैलेडन सब्जी फार्म 12050 एयरपोर्ट रोड, कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड रोड 905-965-3633-905-965-3633।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट 104 मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 905-872-1100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। आप मुझसे 905-513-0012 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या canimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
Grill in the Heart in Mrs. Saga mein open for takeout only. Order via phone. Imran bhai ko call kare.
Intahai laziz biryani khana ho ya phir kadhai khana ho ya phir steaks ko enjoy karna hai to aap order place kijiye 905-405-8383. Grill in the Heart. Tade jaane pehchane raja ya phir jess. ट्रक दी बेहतरीन क्वालिटी सर्विस से नाल फिर वारंटी अकाल ट्रक एंड ल्यूब
ड्राइव थ्रू
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
ट्रक वॉश
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
रिपेयर
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
टायर सर्विस
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
कॉल जेस ओ राजा 905-565-1100
1776 मायर साइड ड्राइव इन मिसिसागा अकाल ट्रक एंड ल्यूब
खूबसूरत दांत बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन फिलिंग्स क्राउन्स ब्रिजेस क्लीनिंग एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स फ्री कंसल्टेशन दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 299-7466
Pizzas Pros and Wings, 6th location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh or mazedar pizzas ki variety, ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa, pinza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838, 905-789-8838
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसा कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन्स वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522 302-2522
ब्रैम्पटन स्पोर्ट हॉल ऑफ फेम जो कि 40 साल से ब्रैम्पटन स्पोर्टिंग कम्युनिटी को सेलिब्रेट करता चला आ रहा है इसका मकसद खेल के मैदान में या बाहर खिलाड़ियों को सराहना है और स्पोर्टिंग फिगर्स को आगे लाने और उसे प्रिजर्व करने में हमारी कम्युनिटी और नौजवानों में खेल की कदर के बारे में तालीम और उसे फरोग देना है इस साल भी 5 नए मेंबर्स ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं क्या आप किसी को जानते हैं हु कैन मेक्स अ डिफरेंस इन स्पोर्ट्स और खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाना चाहता हो 2022 इंडक्टीज नॉमिनेशन खुल गई है फॉर डिटेल्स brampton.ca/bshf नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 15 जून है
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब Throughout Ontario, no appointment needed. Drive-through facility, one-stop shop. Up 33 location, exit 579 from Highway 401. In Napanee, Quick Truck Lube, 519-622-0660. QuickTruckLube.com.
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाजिर खिदमत है नाज़रीन काफ़ी अरसे से हमारे सरदार भाई जो है ये फरमाइश कर रहे थे कि हम सुल्तान राही साहब के बारे में कोई प्रोग्राम पेश करें और ये एक मुश्किल टास्क था कि सुल्तान राही साहब इस दुनिया में नहीं हैं और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया हम उनकी तलाश में थे लेकिन ये जो मसला था ये हमारा मुमताज़ साहिबा जो है पाकिस्तान की फिल्म स्टार उन्होंने हल कर दिया उनकी बहुत मेहरबानी उन्होंने हमेशा हम पर शफकत रखी हमारे साथ उन्होंने हर तरीके से कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने हमारा साथ दिया तो उन्होंने हमारा ये मसला हल कर दिया और आज मैं ये कोशिश करूँगा कि मुमताज़ साहिबा और एक और फिल्म स्टार जो हैं पाकिस्तान की जिन्होंने सुल्तान राही साहब के साथ काम किया अंजुमन साहिबा उनसे भी आपके साथ बात कराऊं सुल्तान राही साहब के बारे में वो कुछ बताएं और अंजुमन साहबा को मिलाने का सेहरा भी जो है वो मुमताज़ साहबा को जाता है मुमताज़ साहबा ने हमारी बहुत मदद की इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश में तो ये सुल्तान राही साहब के बारे में इससे पहले कि हम मुमताज़ साहबा और अंजुमन साहबा के बारे में कुछ बात करें और सुल्तान राही साहब के बारे में कुछ बात करें सुल्तान राही साहब 1938 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और पंजाब में जब पाकिस्तान आए हैं तो वो ग्वाल मंडी जो इलाका है रावलपिंडी का उसमें रहायश पजीर हुए 1956 में एक फिल्म बनी बागी सुधीर और मुसर्रत नज़ीर की, ये इशफाक मलिक साहब ने बनाई थी। इशफाक मलिक साहब जो एएम स्टूडियो के मालिक हैं, और बागी फिल्म के बाद ही एएम स्टूडियो जो था वो तामीर हुआ। बागी फिल्म एक बहुत कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म में सुल्तान राही साहब ने एक्स्ट्रा का रोल अदा किया था, उसमें वो एक्स्ट्रा थे। तो सुल्तान राही साहब ने काफ़ी फिल्मों में काम किया, तकरीबन 100 फिल्मों में वो काम किया, जिनमें उर्दू फिल्में भी थीं। और उन फिल्मों में उन्होंने भाई का रोल, बेटे का रोल, विलन का रोल, साइड रोल जो किए, 100 फिल्मों में उन्होंने काम किया। और उसके बाद उन्होंने 1971 में जो फिल्म बनी बाबुल, ये इकबाल काश्मीरी साहब इसके डायरेक्टर थे, उस फिल्म में ये हीरो आए। और ये 703 पंजाबी फिल्मों में ये इन्होंने हीरो का रोल अदा किया, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है, इतनी ज़्यादा इन्होंने फिल्मों में काम किया। और हमने ये देखा कि ऐसे भी हुआ कि एक दिन में इन्होंने कई कई शिफ्ट्स की। एवेन्यू स्टूडियो से निकलते हैं, बारी स्टूडियो चले जाते हैं, बारी स्टूडियो से निकलते हैं, शानूर स्टूडियो में चले जाते हैं, सेट तैयार हैं, तीन तीन चार चार शिफ्टें, और हर फिल्म की स्टोरी अलग है, और हर फिल्म में सुल्तान राही साहब ने जो एक्शन देने हैं वो डिफरेंट है, लेकिन उनमें इतना कमाल की उनकी एक परफॉर्मेंस थी कि उन्होंने फिल्मों में अपना नाम पैदा किया। और बहार बेगम कहती हैं कि सुल्तान राही ने उनसे कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो ये फिल्म इंडस्ट्री मुझे याद करेगी। तो यही हुआ कि आज सुल्तान राही जैसा कोई दूसरा एक्टर नहीं आया, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल उसकी बदहाली है। आप एवेन्यू स्टूडियो चले जाएं, आप बारी स्टूडियो चले जाएं, आप शानूर स्टूडियो में चले जाएं, कुछ भी नहीं है। 9 जनवरी 1996 को ये गुजरांवाला के करीब इनकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, और जब ये गाड़ी का टायर फ्लैट जो चेंज कर रहे होते हैं इनके ड्राइवर, तो उस वक्त डाकू आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं, इनको गोली मार दी जाती है, इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर हॉस्पिटल है गुजरांवाला का, उसमें ले जाया जाता है, लेकिन ये जानबर नहीं हो सकते और उस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब मैं ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता आपके दरमियान और मुमताज साहबा के दरमियान। मुमताज साहबा, खुश आमदीद, हमें सुल्तान राही साहब के बारे में कुछ बताइए।
इस प्रोग्राम के तमाम रिस्पेक्टेड मेंबरान को मेरा सलाम पहुंचे। इस प्रोग्राम में मैं खुद शरीक होती, किसी वजूहात की वजह से मैं हाजिर न हो सकी। आज का प्रोग्राम अल्लाह पाक गरीक रहमत फरमाए सुल्तान राही साहब के हवाले से है। जहदे मुसलसल, हिम्मत, उम्मीद और कामयाबी, इन चार अनासर से वजूद में आने वाले फनकार को आज दुनिया सुल्तान राही के नाम से जानती है। राही साहब एक ऐसा हीरो बनकर फिल्मी दुनिया के आसमान पर चमका, जिसकी चमक ता हयात कायम रहेगी। फन का सुल्तान, सुल्तान राही, वो आज भी अपने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चाहने वालों की याद और दिलों में जिंदा है। मैं फिल्म स्टार मुमताज इस मौके पर यही कहूंगी कि पंजाबी बॉक्स ऑफिस में अब तक कोई और सुल्तान राही नहीं आया, और शायद कभी आएगा भी नहीं। उनके साथ बतौर आर्टिस्ट और हीरोइन मैंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। एक जमाने में मेरी जोड़ी उनके साथ इस कदर हिट हुई कि उर्दू फिल्मों में भी हम इकट्ठे कास्ट होने लगे। उनके साथ काम करते हुए कभी भी महसूस ही नहीं होता था कि हम इतने बड़े और इतने मसरूफ आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। एक आम से अवामी इंसान जो यूनिट के ہر عام و خاص آدمی سے اس طرح ملتے کہ اسے اپناہیت کا احساس ہوتا۔ وہ ایک سخی اور غریب پرور انسان تھے، ہر ایک کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے۔ اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ غریب اداکاروں، یتیموں، بیواؤں کو اس طرح سے دیتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔
بندی چمکے پسینے نال تے پج گئے کنڈلاں والے وال، بندی چمکے پسینے نال تے پج گئے کنڈلاں والے وال، دن کھا کے لے گئی جاتی لوکی دب دے چیز گواچی، لنو اکھیاں کرن سوال تے پج گئے کنڈلاں والے وال، بندی چمکے
ممتاز صاحبہ، جیسے ہم بات کر رہے تھے پچھلے دنوں سلطان رائی صاحب کے بارے میں، تو آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ کتنے پرخلوص کردار کے مالک تھے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو بتائیے کہ سلطان رائی کا جو پرخلوص کردار تھا وہ کیسا تھا۔
सबका बेहद ख्याल रखते थे, अपने कलीग्स का, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, यूनिट के तमाम मेंबर्स का। टाइम के बड़े पाबंद थे। सारी दुनिया लेट हो सकती थी, लेकिन राही साहब कभी लेट नहीं होते थे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने से गुरेज करते थे। शौक क्या था? गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना। वो जो भी हो शौक से खाते थे और बड़े खुश होते थे। फिल्म की तकमील पर प्रोड्यूसर ने कहना, राही साहब, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो राही साहब ने कहना, कोई बात नहीं, जब दिल करे दे देना, और अगर नहीं भी दिए तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी प्रोड्यूसर के पास फिल्म रिलीज करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो राही साहब ने उसकी भी हेल्प करनी ताकि उसकी फिल्म रिलीज हो सके। राही साहब कभी कभी प्यारी प्यारी शरारतें भी किया करते थे। फिल्म जासूस की शूटिंग के लिए हम लोग एबटाबाद गए। शूटिंग के दौरान उनको शरारत सूझी कि सबको भांग के पकोड़े खिलाए जाएं, क्योंकि वेदर इतना अच्छा नहीं था कि शूटिंग हो सके। पकोड़े आए। अल्लाह पाक गरीक़ रहमत फरमाए इकबाल यूसुफ साहब को, जो फिल्म के डायरेक्टर थे। मैं, राही साहब और इकबाल यूसुफ साहब ने पकोड़े नहीं खाए, स्टाफ के सारे मेंबर्स को खिलाए गए। सब हंस रहे हैं, हम उनको देख के हंस रहे थे। सारा दिन हंसते हंसते गुजर गया।
ओ जावे दे चिड़िया
Thank you.
تھینک یو ویری مچ ممتاز جی. یہ سلطان راہی صاحب جو تھے یہ فلم انڈسٹری میں بڑے مصروف اداکار تھے. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شفٹس کرتے تھے, یہ تین تین چار چار شفٹس ایوری ڈے کرتے تھے. تو چونکہ آپ ان کے ساتھ فلمز میں آپ نے کام کیا اور آپ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں, تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے اور سامعین کو یہ بتائیے کہ دنیاوی کاموں کے علاوہ سلطان راہی صاحب کی اور کون سی مصروفیات تھیں جو آپ کو پتا ہیں؟
دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ان کا دین کے کاموں کی طرف